نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمين يا رب العالمين. آج هم إن شاء الله تعالى سورة الأنفال آيات نمبر 20 سے سٹارٹ کریں گے اور اس پارے کو إن شاء الله مکمل کریں گے. دیکھتے ہیں تفسیر کی طرف. جیسے کہ آپ جانتے ہیں یہ سورہ ہم نے شروع کی تھی تو آپ کو بتایا تھا کہ یہ سورت گھومتی ہے غزوہ بدر کے گرد. اب اس غزوے کے بارے میں کافی چیزیں آپ دیکھ چکے ہیں. اب جو آیات آ رہی ہیں یہ عمومی آیات ہیں، یعنی ان کے اندر رولز بتائے گئے ہیں، اس کے اندر جنگ کی حکمت عملی بتائی گئی ہے اور بھی بہت ساری انسٹرکشنز ایمان والوں کو دی گئی ہیں. مدنی صورت ہے تو آپ دیکھیں گے کہ بہت زیادہ یا ایھا الذین آمنو بھی آپ کو ملے گا. مدنی صورتوں میں یہ بھی ایک ان کی نشانی ہوتی ہے. تو آج اللہ تعالی ہمیں کیا بتا رہے ہیں دیکھتے ہیں. یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو. کون کون ایمان لایا ہوا؟ صحابہ ہی لائے تھے یا ہم بھی لائے ہیں؟ ہم بھی ایمان والے ہیں، ہم دعویٰ کرتے ہیں ایمان کا. تو ان کو کیا حکم دیا جا رہا ہے؟ جو ہی یہ الفاظ آپ قرآن پاک میں دیکھیں یا ایھا الذین آمنو، آپ کو فوراً الرٹ ہو جانا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے مجھے پکارا ہے. کہ صحابہ کرام کی صرف بات نہیں ہو رہی، اللہ نے مجھے پکارا ہے کہ میں بھی تو دعویٰ کرتی ہوں ایمان کا. تو ہمارے لیے کیا ہے؟ اطیعوا اللہ ورسولہ، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی. یعنی آپ کے ایمان کی ریکوائرمنٹ ہے یہ، آپ کے ایمان کا تقاضا ہے یہ. آپ کا ایمان آپ سے کیا مانگتا ہے، کیا چیز ہے جو آپ کے اوپر لازم ہے ایمان لانے کے بعد؟ کہ آپ اطاعت کریں اللہ کی اور اس کے رسول کی. اس کا مطلب ایمان کوئی خالی باتوں کا نام نہیں ہے، ایمان اطاعت کا نام ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب ہم ایمان لے آتے ہیں تو اب ہماری چوائس نہیں ہے کہ اوکے میں دیکھوں گی کہ اگر میں یہ کر سکتی ہوں تو ٹھیک ہے، نہیں کر سکتی تو میں تو عمل نہیں کر سکتی، پھر نہیں عمل کروں گی. نہیں، اٹس ناٹ اے چوائس. ایمان والا ہے ہی وہ جو اطاعت کرتا ہے اللہ کی اور اس کے رسول کی. تو اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی، یہ اللہ کا حکم ہے. اور جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرتا ہے اس نے اللہ کی اطاعت کی. یعنی رسول کی بات اللہ ہی کی بات ہے، اللہ تعالی نے رسول کے ذریعے اپنی بات ہم تک پہنچائی ہے. ظاہر ہے میرے اور آپ کے پاس یا کسی اور انسان کے پاس فرشتے تو نہیں اتریں گے، وہ رسولوں کے پاس ہی جاتے تھے. رسولوں کے ذریعے ہی اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام انسانیت تک پہنچایا ہے. اب اگر رسول کی بات کو ہی آپ نکال دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے رسول کی بات ہی نہیں ماننی، تو پھر اطاعت کیسے کریں گے؟ لہٰذا اللہ تعالیٰ کی اطاعت کیسے ہوگی؟ یہاں پہ اطیع اللہ و رسولہ، کیسے اطاعت ہوگی اللہ اور کیسے اس کے رسول کی اطاعت ہوگی؟ جو قرآن ہے وہ بھی رسول کی زبان سے ہم تک پہنچا ہے، اور جو حدیث ہے وہ بھی رسول کی طرف سے ہے. تو اطاعت اللہ کی اور اس کے رسول کی کیسے ہے؟ کہ جو وحی مطلوع ہے یعنی یہ قرآن ہے، اور جو غیر مطلوع ہے یعنی حدیث ہے، ان سب کو مانا جائے، ان پر عمل کیا جائے، ان کے اوپر سمعنا و اطعنا کہا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ سب لوگ جنت میں جائیں گے سوائے اس کے جس نے انکار کیا. تو لوگوں نے پوچھا انکار کرنے والا کون ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری اطاعت سے انکار کر دیا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت لازم ہے ایک مومن کے اوپر، कोई शख्स ये नहीं कह सकता कि मैं सिर्फ कुरान को तो मानूंगा लेकिन मैं हदीस को नहीं मानता, वो फिर ईमान से खारिज हो जाता है। और आज आप देख रहे हैं ऐसे बहुत सारे फितने हैं मुनकिरीने हदीस के, जो हदीस का ही इनकार करते हैं। तो ईमान के दावा करने वालों, अब कुछ करके भी दिखाओ, इताअत करनी होगी अब अल्लाह और उसके रसूल की। वला तवल्लो अनहु, और ना मुंह फेरो उससे, यानी इताअत से मुंह ना फेरो। वअन्तुम तस्माउन, जबकि तुम, हालांकि तुम सुनते हो, सुन रहे हो। क्या सुन रहे हैं? इस कुरान को, इस बात को, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को भी सुनते थे, कुरान को सुनते थे, इस आयत को भी सुन रहे हैं कि अल्लाह ताला ने इताअत का हुक्म दिया है, तो सुन के अनसुनी ना करो। यानी ये मतलब है, वला तकूनू कल्लदीन कालू समेना वहुम ला यस्मऊन, उन लोगों की तरह ना हो जाना जो कहते हैं हमने सुना और वो नहीं सुनते। कौन लोग ऐसे करते थे? मुनाफिकीन, वो ये करते थे ना, सुनी अनसुनी, एक कान से सुना दूसरे से निकाल दे, उनकी तरह ना हो जाना। यानी ईमान वालों की देखिए कैसे तरबियत की जा रही है, ट्रेनिंग की जा रही है, और ये ट्रेनिंग अल्लाह ताला खुद कर रहे हैं कि देखो, जैसे माँ अपने बच्चे को दिखाती ना, बेटा वो देखो वो बिगड़े हुए बच्चे हैं, तुमने ऐसा नहीं होना, तुमने ऐसा नहीं बनना, वो ऐसे ऐसे करते हैं। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं ईमान वालों को, तुमने अल्लाह की बात माननी है, उसके रसूल की बात मानी, जिस चीज से मना कर दे रुक जाओ, जिस चीज को करने का हुक्म दे कर लो, ऐसे मत हो जाना कि बस सुना और ना सुना बराबर। देखिए बहुत सारे लोग कुरान पाक की मजलिस में भी बैठे होते हैं, ऐसे हैं कि मजलिस से उठ के जैसे कुछ सुना ही नहीं। अच्छा, उसके अलावा कुरान पाक के तालिबे इल्म है, लेकिन उनको किसी मौके पे देखें तो ऐसे लगता है इन्होंने तो कभी कुछ सुना ही नहीं, सुनी अनसुनी। क्या सुनते हैं वो क्लास में बैठ के? क्या, क्योंकि जब कान में जा रही है बात लेकिन दिल पे नहीं जा रही ना, तो ऐसे ही है जैसे सुनी अनसुनी, एक बराबर हो गया। आवाज तो जा रही है मगर कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, अंदर दिल पे कुछ नहीं पड़ रहा। अब देखें ये चीज हम अपने बच्चों तक से भी बर्दाश्त नहीं करते। अगर मेरा, हमारा बच्चा हमने कहे मैंने सुन लिया, अच्छा करता हूँ, अच्छा करता हूँ, अच्छा करता हूँ, और ऐसे बैठा रहे कि जैसे उसने सुना ही नहीं, तो हमने उसको अच्छा अच्छा कहने को क्या करना? कालू समय ना, वो कहते हैं सुन लिया हमने, हालांकि उन्होंने कुछ सुना नहीं है। इंसान सुन के भी अमल में ना लेकर आए तो वो ऐसे ही है जैसे उसने कुछ नहीं सुना। अब हम सारे लोग बैठे हुए अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पाक का नवे पारे पे, अल्लाह ताला ने फरमाया ऐसे मत होना कि जिन्होंने कहा हमने सुना है और उन्होंने कुछ नहीं सुना। जरूरी है कि हम चेक करें अपनी जिंदगी में, कहीं हम ऐसे तो नहीं है कि जो कहें कि हाँ हमने 9 पारे सुने हैं, हमने इनकी तफसीर सुनी है, हमने इनको समझ लिया है, और ऐसे ही हैं जैसे ना समझे, ऐसे ही हैं जैसे कुछ भी नहीं सुना। कहीं हम तो ऐसे नहीं? क्योंकि ये सिर्फ उनको, उनकी बातें नहीं हो रही, सिर्फ सहाबा की तरबियत नहीं हो रही, सबको ये बताया जा रहा है, रहती दुनिया तक जितने ईमान का दावा करने वाले हैं सबके लिए है ये बात। जो बात वाकई सुनी जाए और दिल पे ली जाए ना, वो जरूर असर करती है, उससे जरूर अमल बदलता है। अमल पता है कब नहीं बदलता? जब सुनते हैं लेकिन दिल से नहीं सुनते। ऐसे ही है जैसे कि अल्लाह ताला ने सूरह बकरा में फरमाया ना, काफ़रों की मिसाल, कि वो उनको कुछ सुनवाया जाता तो वो ऐसे है कि जैसे कोई अपने रेबड़ को बुला रहा हो ना, और वो जो भेड़ बकरियां हैं उनको वो अपने चरवाहे की आवाज़ जाती है, उनको कुछ समझ नहीं होती क्या कह रहा है वो, चाहे कह रहा हो आओ तुम्हें ज़िबा करूं, आओ तुम्हारा खून करूं, आओ तुम्हें खाना दूं, कुछ भी नहीं उनको समझ आता, उनको सिर्फ आवाज आती। कहीं हमारी हालतें ऐसी तो नहीं? तो इंशाल्लाह हमने ऐसे सुनना है कि सुन रहे हैं और दिल से सुन रहे हैं, दिल पे ले रहे हैं। और ये तभी होता है सुनी अनसुनी करना जब इंसान डिस्ट्रैक्टेड होता है, जब उसका जहन कहीं और होता है, जब कई और सोचें उसके जहन पे हावी होती हैं। जब आप बैठे ना, फोकस्ड होके बैठे, आप थोड़ी देर के लिए बैठ रहे हैं, अगर वो वक्त भी ऐसे गुजारा कि जहन भटक रहा है, तो क्या पाएंगे? उठेंगे तो कुछ पाया नहीं होगा, चाहे आप 2-3 घंटे एक जगह पे बैठे रहे। आपने वक्त तो दिया, लेकिन हासिल क्या हुआ? कुछ भी नहीं। इसलिए सुनी अनसुनी नहीं करनी। इन शर्र दवाबी अंद अल्लाह सुम्मुल बुकम, बदतरीन अल्लाह के नजदीक कौन है? बदतरीन जानदार में, जानवरों में भी, रेंगने वालों में भी, चलने वालों में भी। ये नहीं कहा गया कि जानवर बदतरीन है, नहीं, जानवरों में भी बदतरीन कौन है? जानदारों में भी बदतरीन वो है जो बहरे और गूंगे। ये वो बहरे गूंगे नहीं है जो फिजिकली बहरे गूंगे, जिनको सुनाई नहीं देता, जो डेफ हैं, वो नहीं मुराद। ये वो बहरे गूंगे हैं जिनके पास कान हैं लेकिन वो सुनते नहीं, जिनके पास जुबानें हैं लेकिन वो बोलती नहीं हक, जिनके पास आंखें हैं लेकिन वो हक को देखती नहीं। आपको याद होगा सूरतुल आराफ के आखिर में हमने यही बात पढ़ी थी, अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों को फरमाया था उनके पास दिल है लेकिन वो सोचते नहीं है, आंखें हैं लेकिन देखती नहीं, कान है लेकिन सुनते नहीं है। और उनके बारे में क्या फरमाया था? उलाइक कल अनआम बल हुम अदल। वो तो अनआम की तरह, चौपायों की तरह, जैसे गाय भैंस, गाय बकरी ऊंट वगैरह, देखें इनकी तरह, बल्कि उनसे भी गए गुजरे हैं। क्यों उनसे क्यों गए गुजरे? उनके पास तो अकल ही नहीं है ना, उनके पास जितनी समझ है वो अपना उतना मकसद हयात पूरा कर रहे हैं, अपनी जिंदगी का मकसद पूरा कर रहे हैं। अल्लाह ने उनको इसी काम के लिए पैदा किया, वो करते जा रहे हैं। असल अफसोस तो उन पे है जिनके पास बहुत अकल है, इतनी अकल है कि इस अकल की वजह से ही तो अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया, अपनी सारी क्रिएशन में सबसे टॉप पे रखा है, अशरफ, उसको शर्फ दिया, ऑनर दिया कि वो अबव है अल्लाह ताला की तमाम मखलूकात में। और उसने ये हाल किया कि वो जानवरों से भी नीचे गिर गया। शर दवाब जानदारों में भी सबसे नीचे। अब आप देखें ये वो लोग हैं, ये किन लोगों को कहा गया? वो ये बात है कि बहरे गूंगे, कैसे बहरे गूंगे? अल्लदीन ला याकिलून, वो जो अकल से काम नहीं लेते, यानी अकल है, ऐसा नहीं है कि वो कोई दिमागी तौर पे माजूर है, वो नहीं है, अकलें हैं, हर किस्म की अकलें हैं। यानी फैशन क्या आजकल चल रहा है वो भी समझ है, बिजनेस कैसे करना है वो भी पता है, बड़ी बड़ी डिग्रियां भी ली हुई हैं, बड़ी बड़ी पढ़ाइयां की हुई हैं, बड़े सेंसिबल हैं, बड़े स्ट्रीट स्मार्ट हैं, लेकिन अल्लाह की बातें समझने के अंदर ऐसे बन जाते हैं कि बिल्कुल ही बेवकूफ है, कुछ जैसे समझ ही नहीं है, पता ही नहीं है, अपने खालिक अपने मालिक के बारे में कुछ जानने की तौफीक ही नहीं है, कभी सोचा ही नहीं उसके बारे में। दुनिया की बातें जितनी मर्जी पूछ लो, माहिर है उसमें, सियासत में क्या हो रहा है पूछ लें आप, जितनी मर्जी बहसें करा लें आप, सब पता होगा, कौन सा पॉलिटिशियन कब उठा, कब बिस्तर पे गया, क्या उसने आज किया, वो भी सब पता है। आज के वो जो फिल्मों के जो हैं वो काम करने वाले, और जो ये खिलाड़ी हैं स्पोर्ट्स वाले, इनकी भी सब बातें पता है, उसको फेवरेट खाना क्या है, उसका फेवरेट कलर क्या है, उसका फलां क्या है, इसके किससे शादी कर ली, वो आज किधर वेकेशन पे गया, सब जानते हैं। मगर अल्लाह रसूल की जब बात आ जाती है कुछ नहीं समझ आती, उस तरह तवज्जो ही नहीं है। अल्लाह हू अकबर, अल्लाह ताला के नजदीकी कैसे हैं? चाहे दुनिया में देखने में लोगों के नजदीकी बहुत समझदार है, लोग इनको बड़ा मानते हैं, लोग उनको बड़े डॉक्टर कहते हैं, पीएचडी डिग्रीज उनके पास हैं, लेकिन अल्लाह के नजदीक वो जमीन में रेंगने वाले जितने जानवर हैं उन सब में भी बदतरीन है। यानी जानवर को हकीर समझा जाता है ना, ये क्या चीज है। उन जानवरों में भी कोई इंसान अपने आप को जानवर नहीं कहलाना चाहता, किसी को कोई गधा कहे, किसी को कोई घोड़ा कहे, किसी को कोई कुत्ता कहे, तो वो कितनी अपनी इसकी हद तक महसूस करेगा, मेरी बेइज्जती कर दी। और अल्लाह ताला फरमाता है वो कुत्ता और गधा भी इससे बेहतर है, ये उनसे भी बदतर है, इसलिए क्योंकि ये अकल नहीं इस्तेमाल करता, ये कान, ये आंखें, ये दिल, ये जुबान, ये दरवाजे हैं जिनके जरिए आप हक को पहचान सकते हैं, हक बोल सकते हैं, हक का इजहार कर सकते हैं, मगर ये अकल से काम ही नहीं लेते, सुनी अनसुनी करते, इनको बताया भी जाए तो कुछ असर नहीं। मोमिनों का क्या हाल बताया गया था, अब उनके सामने अल्लाह की आयात पढ़ी जाती है तो वो ऐसे करते हैं कि वाहुम ला यस्माउन। क्या है, पीछे जाएं जरा, निकालें जरा आयत नंबर, अल्लाह अकबर, आयत नंबर 2 निकालें, इन्नमल मुमिनून अल्लदीना इदा जुकिर अल्लाह वजीलत कुलूबुहुम, उनके तो दिल कांप जाते हैं, वाइजा तुलियत अलैहिम आयातु, जब अल्लाह की आयात पढ़ी जाती है ज़ादतहुम ईमाना, उनका ईमान बढ़ जाता है, और इनका क्या हाल है, उन्होंने अकल ही नहीं इस्तेमाल करनी, सुनी अनसुनी करनी, ऐसे हैं जैसे गूंगे बहरे, जैसे इनको कोई सुनाया ही नहीं जा रहा। यार अब किस कदर पथेटिक इनकी सिचुएशन है। तो हमारे लिए ये बड़ी, देखिए, समझने की बात है, ये अकल जिसके ऊपर हम बड़ा नाज करते हैं ना, जिसके ऊपर हमें बड़ा फख्र होता है कि मैं बड़ी अकलमंद हूं, मैं बड़ी वाइज हूं, मुझे ये हुनर आते हैं, देखो मैं ऐसा खाना बनाती हूँ, मैं ऐसे घर को रखती हूँ, मैं, ये ना हो कि शरत दवाब में हो अल्लाह के नजदीक। कितने कितने काबिल लोगों को आप देखते हैं ना, कितने काबिल लोग होते हैं, बहुत बड़ी हर चीज की उनको समझ होती, इस तरफ नहीं बात करते, इस तरफ आते ही नहीं, वो अपनी अकल से हर चीज का काम ले रहे हैं, लेकिन अल्लाह की आयात समझना, अपने मालिक को जानना, उसकी मार्फत हासिल करना, अपने मालिक की पसंद और नापसंद को समझना, अपने मालिक के इशारों के ऊपर चलना, कुछ पता ही नहीं, कितना दुख होता है ना फिर देख के, ये शरत दवाब। और आज देखें इंसानियत की अक्सरियत शरत दवाब है, अक्सरियत कुछ समझ नहीं है। तो इसमें से नहीं होना, अगर देखें किसी इंसान को अपने मालिक का ही नहीं पता, उसकी पहचान नहीं है, तो वाकई उसका होना या ना होना बराबर है, वो कितना ही बड़ा अमीर हो, कितना ही बड़ा बिजनेसमैन हो, कितना ही बड़ा सियासतदान हो, वजीर आजम हो, क्या हो, तो इसका मतलब है अकल इस्तेमाल करनी है, समझना है चीजों को इस, ठीक है आप इस अकल को इस्तेमाल करें, जरूर करें अपने दुनियावी मामलात के लिए, लेकिन सिर्फ ये इसके लिए तो नहीं दी गई, जिसने मालिक को ही ना पहचाना वो कैसा बंदा है, जिसको पता ही नहीं मेरा मालिक कौन है, वो क्या चाहता है मुझसे। जिंदगियां गुजर गई हमारी, देखें आज हमारी जितनी एज हो गई, आज हम अभी नवे पारे पर पहुंचे, अभी हम देख रहे हैं हमारे मालिक को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद, मेरे मालिक ने मुझसे क्या बात की, मेरा मास्टर मुझसे क्या चाहता है, ये अब जाके हम देख रहे हैं। आज तक हमने कैसी जिंदगियां गुजारी, शरद दवाब वाले, अल्लाह के नजदीक ऐसे ही हैं, उसको ऐसे ही नजर आते हैं, अब जो जितने मर्जी बन संवर के फिर रहे हैं। तो इसलिए सोचें देखें कि मेरे रब की, मेरे मालिक की पसंद क्या है, मैं जहां बैठी हूं मेरा ये बैठना मेरे मालिक को पसंद होगा, मैं जिन चीजों में वक्त गुजार रही हूं ये मेरा वक्त गुजारना मेरे मालिक को कैसा लगता होगा, ऐसे कभी सोचते हैं, अकल इसलिए ही तो है ना ये सोचें, मेरा ये हुलिया, मेरा ये लिबास मेरे मालिक को पसंद होगा या नहीं, मेरी ये मजलिसें, मेरी ये तन्हाइयां मेरे मालिक को कैसी लगती होंगी? क्या मैं उसको पसंद हूं कि नहीं हूं? अगर मैं उसको पसंद नहीं हूं ना, तो मैं चौपाइयों से भी बदतर। फिर वो मुझसे तो अच्छे ही हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ना कि बास सवारियां अपने सवारों से ज्यादा बेहतर हैं। वाकई बास सवारियां भी अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, तो इन पे बैठे सवारों को कुछ पता ही नहीं हमारा मालिक है कौन जिसका जिक्र करना। तो जिंदगी हो तो ऐसी हो जो मालिक को पसंद हो, वरना ये जिंदगी कुछ नहीं है सिवाय इसी के चीज, जैसे एक गाय है या एक बकरी है, चर रही है, चुग रही है, फिर रही है। तो अल्लाह से दुआ करनी है, अल्लाह अपनी पसंद वाली जिंदगी दे दे हमें, अल्लाह चौपाइयों वाली जिंदगी गुजार के ना चले जाए हम। चौपाए बल्कि बलहुम अदल उनसे भी ज्यादा बहके हुए कि चौपाए वो भी को अपना मकसद पूरा करें, ये ना हो कि अल्लाह हमें ये भी ना समझ आए कि हमारा मकसद क्या है। वलो आलिम अल्लाहु फीहिम खैरन ला अस्मआहुम, अगर अल्लाह ताला उनमें कोई खैर जान लेता ना तो उनको जरूर सुनवा देता। यानी अगर ये वाकई दिल वाले होते, अगर इनके अंदर वाकई कोई खैर होती तो अल्लाह ने उनको सुनवा ही देना था। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज्यादा ये तकलीफ होती थी ना कि क्यों नहीं ये समझते, क्यों नहीं ये सुनते। तो अगर इन इनमें कोई खैर होती तो अल्लाह सुनवा देता। यानी इसका मतलब है कि ये भी इंसान के अंदर अगर तलब होती है तो अल्लाह ताला उसको सुनवा ही देता। जबरदस्ती नहीं अल्लाह किसी को सुनवाता, यानी नहीं सुनना चाहता, जो नहीं आना चाहता इधर। वो जो कई लोग कह रहे थे ना, जब उनसे कहें कि आओ अल्लाह की बात को सुन लो, लोगों समझ तो लो, हम कोई तुमसे कुछ मांगते थोड़े हैं, आ जाओ थोड़ा सा वक्त दे दो। कहते नहीं, बस वो ये मसला, वो मसला, वो चीज़, वो चीज़, कितनी सारी बातें होती। तो बात ये नहीं होती कि मैं नहीं आना चाहती, बात ये है कि अल्लाह ताला का ये कलाम बड़ा ही गयूर है, इसमें बड़ी गैरत है। तुम नहीं आना चाहते ना तो अल्लाह भी नहीं तुम्हें देना चाहता। तुम्हारे अंदर कोई अगर भलाई होती तो अल्लाह ताला तुम्हें तौफीक भी दे देता। इसका मतलब तुम्हारे अपने अंदर नहीं है खैर, अंदर खराब हुआ हुआ है, अंदर है जो करप्ट हुआ हुआ है। जब करप्शन अंदर है ना तो हम सोचते हैं कि मैं नहीं आई, मैंने उनको जवाब दे दिया, मैंने नहीं दिया, अल्लाह ताला चाहता ही नहीं है, जाओ चले जाओ तुम। अल्लाह अकबर। जाहिर है जब कान होने के बावजूद हक सुनाई नहीं देता, आंखें होने के बावजूद दिखाई नहीं देता, तो इसका मतलब यही है ना कि अंदर ही कुछ खराबी है। अगर अच्छे होते तो अल्लाह तौफीक भी दे देता। तो इसका मतलब इंसान अल्लाह ताला का ही शुक्र अदा करे अगर उसको सुनने की तौफीक मिल गई, कि अल्लाह ताला ने उसके अंदर कोई खैर देखी तो उसको सुनवा दी, तो अल्हम्दुलिल्लाह कहें। अगर अंदर गंद होगा ना तो सुन भी लेंगे तो मुंह फेर के भाग जाएंगे। आगे आ रहा है ना, वलो अस्मा हूं लतवल्लहु मारिदून, अगर ये सुन भी लेते ना, इनको सुनवा भी देता अल्लाह, तो चूंकि अंदर नहीं ना खैर तो वो मुंह फेर जाते, और वो है ही मुंह फेरने वाले। आप देखिए बहुत सारे लोग फिर लोग बातें बनाते हैं, लो जी कुरान के स्टूडेंट हैं और देखो ऐसे कुरान वाले हैं और ऐसे, और देखो कुरान इतना सुन के भी इनका, इसलिए कि अंदर खुद के खैर नहीं होती। इसलिए जब अंदर ही खैर नहीं है तो इंसान बदलता ही नहीं। बस फिर ये सुनना, ये सिर्फ एक क्लासें लेना है, ये सिर्फ एक एक्सरसाइज है, इसके अलावा कुछ नहीं। अगर इस जज्बे के साथ नहीं बैठे हुए ना कि ये कुरान जैसे जैसे कहता जाएगा वैसे मैं करती जाऊंगी, वैसे मैंने ढलते जाना, ये मेरे मालिक की बातें हैं। देखिए जो लोग खैर चाहते हैं ना, इससे उनको खैर मिलती है, जो हिदायत चाहते हैं उनको हिदायत मिलती है। ये ना कहें कि पता नहीं ये अपनी तरफ से ही कोई बातें बना रही हैं, अपनी तरफ से नहीं, आपके सामने आयतें लिखी हैं, उनका तर्जुमा आप देख रहे हैं। कोई अपनी तरफ से बातें नहीं। कुछ लोग ये क्या के इग्नोर कर देते ना, नहीं ये तो मौलवियों की बातें। मौलवियों की क्या बातें, ये देखिए आपके सामने लिखा हुआ है, इससे ज्यादा क्लियर बात क्या हो सकती है। तो अपनी अंदर जब गंध है तो फिर वो सुन भी लेंगे, कोई फायदा नहीं सुनने का। पहले भी मैंने आपको मिसाल दी हुई है कि देखें एक ही फूड है, एक सेहतमंद इंसान खाता है उसको तो उसकी ताकत बढ़ती है, और एक बीमार वही फूड खा ले तो उसके लिए भारी हो जाता है, वो उसको हजम नहीं कर पाता। तो मसला कहाँ है, फूड में मसला है या उसके अंदर मसला? मसला उसके अंदर की बीमारी है, कमजोरी है। इसी तरह ये अल्लाह का कलाम है, कुछ लोग ऐसे हैं उनके अंदर खैर है तो उनकी आंखें बहने लगती हैं इसको सुन के, खुदा का खौफ उनके ऊपर तारी हो जाता है, ये मेरे रब का कलाम है, वो ये कहने लगते हैं। और कुछ बेअसरे होते हैं, सुन के भी वहुम ला यस्माउन, वो नहीं सुनते, लतवल्लो वो मुंह फेर जाते हैं, वो मुंह ही फेरने वाले। या तो उनका मकसद सिर्फ डिग्री लेना होता है, सर्टिफिकेट लेना होता है, वाह वाह करानी होती है, या लोगों में बैठ के बस बातें करनी होती है कि मुझे भी कुछ आता है बस। क्योंकि अगर उनके अंदर ये खैर होती कि हमने हिदायत पानी है तो अल्लाह जरूर हिदायत दे देता। तो याद रखें कान आंखें जुबानें ये तो जानवरों की भी होती हैं, हम में और उनमें फिर क्या फर्क रहे। अकल है, समझ है जो हमें उनसे ऊपर करती है, और अगर समझ ही इस्तेमाल ना की तो फिर उनमें और हम में क्या है। अल्लाह अकबर, जब ऐसी आयतें पढ़े ना तो बहुत ज्यादा अपने आप को चेक करें कि मैं भी तो कुरान पाक की तालिबेल हूँ, मैं भी तो सुनती हूँ और बहुत कुछ सुनती हूँ। कई लोग बहुत कुछ सुनते रहते हैं, गाड़ियों में भी उन्होंने बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें लगाई होती हैं, बहुत कुछ तिलावत भी सुनते रहते हैं, बहुत कुछ लेक्चर्स भी सुनते रहते हैं, बहुत कुछ सुनते हैं, लेकिन फिर उसके बाद क्या है। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूल, ए ईमान वालो लबैक कहा करो, जवाब दिया करो, रिस्पॉन्स दिया करो। किसको? अल्लाह को और उसके रसूल को। कब? इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम, जब वो पुकारे तुमको उस चीज की तरफ जो जिंदगी बख्शती है तुमको, यानी जिस तरफ अल्लाह रसूल बुलाते हैं उस तरफ लब्बई कहो, मैं हाजिर हूं मेरे रब, तुम्हारे लिए इसमें जिंदगी है। देखें जो चीज भी जिस चीज की तरफ भी अल्लाह ताला बुलाते हैं उसके अंदर हमारे लिए जिंदगी है, यानी हमारे लिए खैर है। मुर्दा को हम अच्छा नहीं समझते, जिंदा को अच्छा समझते हैं ना। तो जितने भी अहकामे शरीयत हैं, इबादात हैं, मामलात हैं, हकूक व फराइज से मुतल्लिक हमें अहकामात दिए गए हैं, सब ये हयात हैं, जिंदगी हैं। कुराने पाक ये जिंदगी है, दीने इस्लाम जिंदगी है। इसीलिए तो देखे ना, आपने पहले भी पढ़ा है मुर्दा और जिंदा की मिसाल कुरान में, तो मुर्दा से मुराद कौन होता है? काफिर। और जिंदा से मुराद कौन होता है? जिसमें ईमान है, जिसके पास इस्लाम की दौलत है। तो ये जिंदगी है, जब वो तुम्हें जिंदगी की तरफ बुलाते हैं तो तुम लब्बाई कहा करो, जो तुम्हें आने को कहा है तो फौरन आया करो, या हम हाजिर हैं अल्लाह। क्योंकि अल्लाह रसूल की दावत जो होगी वो तुम्हारे लिए कभी भी नुकसान की चीज नहीं होगी, उसमें तुम्हारी बेहतरी है, तुम्हारे लिए ही हयात है। युहयीकुम, वो जिंदगी बख्शती है तुमको, उनका नहीं फायदा, तुम्हारा अपना फायदा है। तो अब रसूल बुलाएं, चाहे वो जंग में निकलने को फरमा रहे हैं कि जंग में निकलो, चाहे उस तरफ बुला रहे हैं, चाहे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी काम को करने का हुक्म दे रहे हैं, चाहे किसी से रोकने का कर रहे हैं। देखिए ये चीज है इताअत, इताअत का ये आप देखें बार बार ओबीडियंस का दर्स दिया जा रहा है, बी ओबीडियंट, डिसोबीडियंस वाली जिंदगी छोड़ दो। जैसे बनी इसराइल कहते थे ना, समय ना वासही ना, हमने सुन लिया ना, हमने मानना नहीं है, ऐसे नहीं बनो। और ईमान वालों का क्या है, समयना व अताना, इसके अंदर वक्फा नहीं है। समयना और अताना में वक्फा नहीं होना चाहिए। समयना तो हो गया है, लेकिन अताना करने से पहले हम जरा सोचेंगे, हम जरा देखेंगे, इसमें हमारा कोई नुकसान तो नहीं, इसमें हमारा ये तो नहीं, उसमें वो तो नहीं, पता नहीं क्या क्या सोचें आती हैं, मशवरा करेंगे, फलाना करेंगे। नहीं, अल्लाह रसूल से बढ़ के किसकी बात हो सकती है तुम्हारे लिए? नहीं, हस्बैंड से पूछूंगी, नहीं बच्चों से मशवरा करूंगी, नहीं लोगों को पहले देखूंगी। नहीं, ओबीडियंस वाली जिंदगी पे आओ। आप देख लें, अगर उनकी मिसाल देखें उस वक्त जंगे बदर के तनाजुर में, इसको देखें आप, तो उनको कहा जा रहा है कि जब आपको कहा जाए कि जंग के लिए निकलो, तो उसमें पसो पेश ना करो, रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए, फौरन निकल आओ, क्योंकि इसमें आपके लिए जिंदगी कैसे जिंदगी है, वो तो आगे नजर आ रहा कि मौत है। लड़ेंगे, इतना बड़ा दुश्मन का लश्कर है, इसके साथ लड़ेंगे तो मौत है, लेकिन अल्लाह ताला फरमा रहे नहीं, उसमें जिंदगी है। बात अल्लाह की सच्ची है या हमारी जो बेअकल हम हैं, हमारी बात सही हो सकती? अल्लाह की बात सच्ची। और वाकई फिर जब उन्होंने जंग लड़ी तो कितना फायदा हुआ, दुश्मन के दिल में ऐसा रोब बैठ गया, दुश्मन के तो छोड़े, पूरे अरब में धाक बैठ गई मुसलमानों की, कि ये भी कोई पावर है, उनको भी कुछ पावर समझा जाने लगा। अब वो काफले को लूट भी लेते तो क्या था, माल मिल जाना था, लेकिन उसके पीछे ये लश्कर भी आ रहा था, उन्होंने ऐसे ही थोड़ी माल लूटने देना था, उन्हें कोई जाने देना था। और काफला टूटने से क्या, वहां पे तो बहुत सारे काफले, वो उनको लोग लूट ही लेते थे, तो कोई ऐसी बड़ी बात तो नहीं थी। जो इस जंग से हासिल हुआ वो कभी भी नहीं हासिल होना था काफले को लूटने से। तो लिहाजा जब अल्लाह रसूल का हुक्म आ जाए तो फिर फौरन आगे बढ़ो, फौरन मान जाओ और टाल मटोल ना करो, रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए। वालमू, और जान लो, अन्नल्लाह यहूलु बैनल मरई, के बेशक अल्लाह ताला हायल होता है किसके दरमियान, इंसान के और उसके दिल के। बड़ी बात है, बड़ी गहरी बात है ये। अल्लाह ताला हायल होता है इंसान के और उसके दिल के दरमियान। इससे पहले क्या बात चल रही, कि जो चीज जिंदगी देती है तुम्हें उसकी तरफ अल्लाह रसूल बुलाते हैं तो फौरन लब्बाई कहा करो, ठीक है? क्योंकि क्या है, अल्लाह ताला हायल है बंदे और उसके दिल के दरमियान। क्या मतलब हुआ इसका? इसके दो माने हैं। एक माना तो ये है कि जब अल्लाह रसूल बुलाएं, किसी नेक काम करने का हुक्म दे, या गुनाह से बचने के या गुनाह से रुकने का हुक्म दे, तो फौरन मान लो, देर ना करो, देर ना करो। इसको गनीमत समझो, इस वक्त को जो आपको मिल गया, या जो आपके अंदर उस वक्त जोश है ना, जैसे जैसे आप फॉर एग्जांपल आप आयतें सुनते हैं, उसके बाद क्या होता है, दिल करता है फौरन अमल कर लें। बाज़ औकात इंसान उसमें टाल मटोल करता है थोड़ी देर, अच्छा चलो मेरे ख्याल में मैं आज नहीं करती, मेरा ख्याल कल कर लूंगी, मेरा ख्याल परसों कर लूंगी, मेरा ख्याल में मेरे इम्तिहान हो जाए तब कर लूंगी, मेरी शादी हो जाए तब कर लूंगी, बच्चे बड़े हो जाए तब कर लूंगी, मुझे जॉब मिल जाए ना तब करूंगी, जरा हालात थोड़े ठीक हो जाए ना मेरे घर के तब कर लूंगी। लेकिन ऐसा होता है कि वो काम हो ही नहीं पाता, फिर वो अमल रह ही जाता है, अल्लाह ताला हायल हो जाता है बंदे के और उसके दिल के दरमियान, यानी रुकावट आ जाती है। कोई भी रुकावट हो सकती है, हो सकता है इंसान को मौत ही आ जाए। चलो मौत नहीं आई तो कोई बीमारी आ सकती है, कोई ऐसे हालात हो सकते हैं कि उस काम का करने की फुर्सत ही ना मिले, या वो जोश ही ठंडा हो जाए। बाज दफा होते ना उसी वक्त हम कर ले तो कर ले, आपने मसलन सदका करने का ही सोचा, उस वक्त कर लिया तो कर लिया, बड़ा ही उस वक्त जोश था, उसके बाद बस जो सोच में पड़े तो सोच में पड़े ही रह गए, भूल ही गया करना, या सुस्ती छा गई, तौफीक छिन जाती है। मतलब ये अल्लाह ताला हायल हो जाता है उसके दरम्यान, यानी तौफीक छिन जाती है, वो फिर काम कर ही नहीं पाता, वो अल्लाह ताला उसके अमल और उसके दरमियान, यानी उसे करने के दरमियान हायल हो गया, उसका दिल ही बदल गया, अब दिल करता ही नहीं। दिल भी एक जैसे नहीं रहते ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि दिल जो है वो अल्लाह ताला की दो करीम उंगलियों के दरमियान है, वो जिधर चाहे इनको फेर दे। सहाबा ने पूछा था ना कि या रसूलल्लाह, आप इतनी ये दुआ पढ़ते हैं, या मुकल्लिबल कुलूब सब्बित कल्बी अला दीनी का, तो हम आप पे और आप पे उतरी हुई वही पे ईमान ले तो आए हैं, आप तो हमें किस बात का खतरा है, ये जैसे हम भी सोचते हैं ना, हम तो मुसलमान हैं ही, हमें क्या, अब तो अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे हमें, हमने हमने कौन सा फिर जाना है इस्लाम से, बस हम तो सेफ है ना, हम तो मुसलमान हैं ही, आपको क्या पता, आपको क्या पता, ये दिल बदलते भी देर नहीं लगती। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से ये दुआ मांगा करते थे, मुसनद अहमद में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, हर दिल अल्लाह रब्बुल आलमीन की उंगलियों में से दो उंगलियों के दरमियान, जब सीधा करना चाहता है कर देता, जब टेढ़ा करना चाहता है कर देता। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो इसलिए एक तो ये दुआ बड़ी मांगनी चाहिए, या मुकल्लिबल कुलूब सब्बित कल्बी अला दीनी का, क्योंकि अल्लाह तआला के इरादे के बगैर इंसान कोई नेकी नहीं कर सकता, ना ईमान ला सकता है, ना कोई और नेकी कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता। तो एक तो ये बात कि इंसान ये दुआ करता रहे, दूसरे ये कि बहुत केयरफुल रहे कि आप जब किसी चीज का इरादा करें ना नेकी का, उसको फौरन कर लें, कल कल पे ना डालें, वरना ये जो आज जोश है ना ये ठंडा हो जाना है, और आपको क्या पता आपका कल दिल क्या होता है, या वो पता है क्या, पता कोई मसरूफियत ऐसी आ जाए, तो मौका छिन जाता है, अल्लाह ताला हायल हो जाता है बंदे और उसके दरमियान, दिल के दरमियान ये मौका छीन लेता है अल्लाह ताला। कई मौके आपको भी पता होंगे, मौका उस वक्त था, मौका वो बाद में आप कहते हैं, तो वो कहते हैं नहीं, अब तो हमारे फंड्स पूरे हो गए, अब तो हमें नहीं चाहिए। मैं सिर्फ ये सदका खैरात की बात नहीं कर रही, बहुत सारी चीजों में आपने आज सोचा मैं कुरान पाक सीखती हूँ, फिर बड़ा वाकई बड़ा दिल नरम हो गया, किसी दर्स में बैठे थे, बड़ा सबने हाथ खड़े कर दिए, हाँ हम अल्लाह की खातिर अपना वक्त लगाने को तैयार हैं, हम अल्लाह के दीन को सीखने को तैयार हैं, हम ये कुर्बानी देने को तैयार हैं। उसके बाद घर गए, बच्चे, घर, चीजें, शॉपिंग, ये वो, फिर उसके बाद वो पता ही नहीं कि क्या कहा था, क्योंकि फौरन उसके ऊपर स्टेप नहीं ना लिया, फौरन इंसान उसके उस चीज को कर ले, फौरन उसके अंदर अपना हिस्सा डाल दे, वरना दिल मुड़ जाते हैं, ये टाल मटोल ये इंसान को अमल से दूर कर देती है। बड़ा ही बेवकूफ है जो कि कल के ऊपर चीज डालता है, उस कल पे जिसके उसको पता ही नहीं उस कल तक मैंने जिंदा भी होना है कि नहीं, कल मैं हिजाब लूंगी, कल मैं फलां चीज करूंगी, कल मैं, बड़े बड़े प्लान होते हैं, कर लूंगी, मेरे रोजे रह रहे हैं ना मैं पूरा कर लूंगी, अभी तो बड़ा टाइम पड़ा, आपको क्या पता, अल्लाह ना करे कल को कोई ऐसी बीमारी आ जाए, रख ही ना सके रोजे, तो कितनी सारी चीजें हैं जो हमने कल पे डाली हुई है, अंदाजा कीजिए, और हमें कोई इस चीज का खौफ नहीं होता कि दिल क्या पता पलट जाए, क्या पता मुझे जिंदगी की मोहलत ही ना मिले, क्या पता कोई ऐसे हालात हो जाए, और बड़े बड़े काम कल पे डाल के बैठे हैं, और वो अक्सर देखिएगा वो आखरत से रिलेटेड होते हैं, दुनिया के काम तो बड़ी जल्दी कर लेते हैं, एक सेल लगी हो, हम ये नहीं कभी कहते, तो क्या हुआ अगर अभी लगी हुई है, फिर फिर भी तो लग ही जाएगी, बहुत फौरन भागते हैं, जैसे ये आखिरी है, इसके बाद नहीं कभी मिलना। कितनी हमारा शौक और जज्बा कितना होता है, लेकिन जो आखरत से रिलेटेड चीजें ना, उनके अंदर अक्सर हमारे रवैये बहुत कैजुअल होते हैं, कि जैसे ये मौके हमेशा ही यहीं पे तो पड़े रहने। कैसे आप कह सकते हैं, बड़ी खाम ख्याली है हमारी। और दूसरा मतलब इसका यह है कि अल्लाह ताला अपने बंदे से बहुत करीब है। नहनु अकरबु इलैहि मिन हबलिल वरीद, अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्लाह तुमसे तुम्हारी रगे जान से भी ज्यादा करीब है, तो वो हायल है बंदे और उसके दिल के दरमियान। बंदे के दिल क्या सोचता है इससे पहले कि उसको पता चले, वो अल्लाह को पहले ही पता है। तो इसलिए वो सब जानता है। और फिर अल्लाह ताला के उसमें मुट्ठी में है इंसान का दिल, उसकी उंगलियों में है। जब वो किसी बंदे को किसी बुराई से हिफाजत करना चाहे तो उसके दिल और उसके वो उस गुनाह के दरमियान आड़ कर देता है। और जब किसी की बदबख्ती मुकद्दर बन चुकी हो तो उसके दिल में और नेक कामों के दरमियान आड़ कर दी जाती है। तो ये है ना चीजें। इसलिए फिर फरमाया कि फौरन लबैक कहा करो अल्लाह रसूल की बात पे। इस बारे में एक वाकया भी आता है तिर्मिजी शरीफ में और नसाई में भी, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रोज उबई बिन काब को बुलाया, तो उबई बिन काब नमाज पढ़ रहे थे, जल्दी जल्दी नमाज पूरी करके हाजिर हुई। आपने फरमाया जब मैंने तुम्हें बुलाया था तो तुमने देर क्यों कर दी, फरमाने लगे मैं नमाज पढ़ रहा था। आपने फरमाया तुमने अल्लाह ताला की ये बात नहीं सुनी, इस्तजीबू लिल्लाहि वले रसूली ज़ादा को, फौरन लबाई को। तो अगर नमाज़े हालत में भी वो बुलाएं तो फौरन हाजिर हो जाए। इसी तरह वालदेन के लिए भी अगर वो भी पुकारे और आप फर्ज नमाज नहीं नफली नमाज अगर आप पढ़ें तो फौरन सलाम फेर के जाएं और उनकी बात को सुने। तो इसलिए ये देखें, ये जो बातें हैं ना, जिस वक्त प्रैक्टिकल होता है, अब फिजिकली तो अल्लाह रसूल इस तरह हमें कोई बुला नहीं रहे, अल्लाह के रसूल हमें नहीं बुला रहे, मगर उनकी जो कही भी बातें हैं उन पे रिस्पॉन्स देना। आप जब हदीस सुनते हैं, आप जब कोई बात सुनते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया या अल्लाह ताला ने ये हुक्म दिया है, आगे आ रही है बात अभी अभी आएगी, कि अल्लाह ताला ने ये हुक्म दिया है, कुरान में वो बात होती है, उसके बाद उसके ऊपर मेरा रिएक्शन क्या होता है, डिलेड रिएक्शन है, फौरन रिएक्ट करती हूँ या करती ही नहीं हूँ। वहुम ला यस्माउन, या ऐसी हूँ या लतवल्लौ, मुंह फेर के चली जाती हूँ, ऐसा मेरा रिएक्शन होता है। क्या होता है बताएं, अल्लाह अकबर। काफी चीजें अभी हमारे अंदर फिक्स होने वाली हैं, बहुत सारी चीजें हैं, और अभी हम अपने आप को समझते हैं कि हम तो फिक्स्ड ही हैं। वअन्नहु इलैहि तुहशरून, याद रखना तुम्हें इकट्ठे तो उसकी तरफ ही होना, वो लौटना तो उसकी तरफ ही है, यानी जिसकी तरफ तुमने जाना है ना वापस, तुम सबने जमा होना, उसकी बात सुन लो, उसकी बात सुनो। वो पुकारे हैं तो लब्बई कहो। आज दूर भागना चाहते हो ना उससे, तो उससे कब तक दूर भागोगे। कहते हैं ये मौलवाइन और वो ये मौलवी और ये फलां और ये, हमें ऐसे तो नहीं बनना चाहते ना, यानी वो चीजें जो 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 लोग अल्लाह ताला के और उसके रसूल के और उसके दीन के नाम से पहचाने जाते हैं, हम वो पहचान नहीं अपनी रखना चाहते कि हमें भी कोई ऐसे देखे। हम मॉडर्न लगना चाहते हैं, हम अप टू डेट लगना चाहते हैं, एकदम क्या पुराने पुराने से लोग हैं, तो इनसे जरा दूर ही रहना चाहिए, है ना। तो कब तक भागेंगे, कब तक अल्लाह रसूल से भागेंगे, कब तक उनके अहकामात से भागेंगे, कब तक उनकी बातों से भागेंगे। जाना तो उसकी तरफ ही है, भाग लो जितना भागना। जो मुजरिम होता है वो भागता है ना, जिसने कोई जुर्म किया होता है, वो फिर जब उसको पकड़ा पकड़ने के लिए पुलिस आती तो फिर क्या हाल होता उसका। और जिसके काम अच्छे होते हैं, जो गुड सिटीजन होता है, उसके लिए तो जो प्रोटोकॉल होता है, उसको जब लेने के लिए आते हैं तो रेड कारपेट बिछती है। अल्लाह ताला के भी जो मुजरिम होंगे ना, जो उससे दूर भाग रहे होंगे, फिर उनके लिए भी ऐसे फरिश्ते आएंगे जो मार मार के लेके जाएंगे। तो भागना इज नॉट द सोल्यूशन। आप सोचते हैं कि भाग के जान छुड़ा लेंगे, इन चीजों से भाग के किधर भागेंगे, इधर जान छुड़ाएंगे। ये जमीन भी अल्लाह की, आसमान भी अल्लाह का, ये जिस्म दिया हुआ भी अल्लाह का, ये टांगे जिनसे भाग रहे हैं वो भी अल्लाह की, ये दिमाग जिसमें ये सोचे ला रहे हैं कि मैंने नहीं करना, ये भी अल्लाह का। ये जो बात आई है ना पीछे, कि इसमें तुम्हारे लिए हयात है, वो पता है। बहुत सारी चीजें कुराने पाक में भी आप पढ़ते हैं तो वो हयात है उसके अंदर। जैसे वलकुम फिल कसास हयातु या उलिल अलबाब, कसास में तुम्हारे लिए हयात है अकल वालों, सूरह बकरा में आया था ना। तो कुराने पाक में बहुत सारी ऐसी टॉपिक्स आते हैं जिन को हमें लगता है, जैसे सहाबा को लग रहा था ना कि अगर हम गए तो अगर हमने रसूल की बात मान ली तो ये तो मौत नजर आ रही है आगे, लेकिन उसमें हयात थी। इसी तरह रसूल की बात, अल्लाह की बात, ये कुरान भी तो है ना, हदीस भी तो है, इनमें भी बहुत सारी ऐसी बातें जिनमें हयात है, हमारी जिंदगी है इनमें, हमारी बेहतरी है इनमें, लेकिन उन पे अमल करना हम कहते हैं ऐसे जैसे हमें मौत आ रही है। इंसान कहता है हाय मैं तो मर ही जाऊंगी अगर मैंने ये कर लिया तो, ये नहीं मेरे से होना, ये तो बड़ा ही मुश्किल काम है। लेकिन अगर आप बिलीफ रखते हैं ना इस कुरान पे, तो इसी में जिंदगी है, जो अल्लाह रसूल के हुक्म है ना उनमें जिंदगी है, चाहे मुझे मौत नजर आ रही है उसमें, है ना। ऐसे है काम आप, कई इंसान बोलता है आए ये नहीं मुझसे होना, आए ये बड़ा ही मुश्किल, आए बाज तो सारी उसको कह देते हैं कि अमल ही बड़ा मुश्किल है, सारा ही अमल बड़ा मुश्किल। तो एक चीज को नहीं कहते, अमल ही उनके लिए अमल करना ऐसे जैसे मौत है, मर ही जाऊंगी मैं। मौत नहीं है ये, अगर तुम समझो तो ये जिंदगी है। सुभान अल्लाह। तो इसलिए दीन आपसे जो भी मुतालबा करे, डिमांड करे, और दिल गवाही दे देना कि ये ठीक है, ये तो वाकई कुरान में लिखा है, ये ठीक है, फिर उसे कन्नी ना कतराए। वरना पता है क्या सजा मिलती है, यही जो मैंने अभी बताया, ये अल्लाह ताला हायल हो जाता है बंदे और उसके दिल के दरमियान। अल्लाह हायल है यानी अल्लाह फिर सलाहियत ही छीन लेता है, सलाहियत ही छीन लेता है, फिर बस काम वो हो ही नहीं पाता। अल्लाह हू अकबर। तो ये कैजुअल एटीट्यूड छोड़ दे, क्योंकि हर काम के लिए दिल की आमादगी जरूरी है। दिल आमादा होगा तो काम होगा ना, तो दिल को फिर उसके बाद आप आमादा करना भी चाहेंगे, दिल ने नहीं मानना, दिल नहीं आमादा होगा तो कर लिया करें। जब कोई बात आए, हुक्म आए, उसी वक्त लब्बैक कहा करें। वत्तकू फितनतल्ला तुसीबन्नल्लदीन ज़लमू मिनकुम ख़ासा। डरो डरो उस फितने से जो नहीं पहुंचेगा उन लोगों को जिन्होंने जुल्म किया तुम में से, खास तौर पे। ये अब आयत उन लोगों के लिए है जो ये समझते हैं कि मैं नेक हो जाऊं काफी है, अब मुझे नहीं परवाह लोग क्या करते हैं क्या नहीं करते, मैंने इनका ठेका तो नहीं लिया हुआ ना, करते हैं गलत करते रहे, मुझे क्या, मैं नेक हूं ना बस काफी है, मैं अपनी अल्लाह अल्लाह करूं। नहीं, तो यानी डरो उस इम्तिहान से, उस फितने से, उस अजाब से। फिर जो आता है ना तो सिर्फ जालिमों पे नहीं आता, खास तौर पे फिर सबको अपनी लपेट में ले लेता है, सब उसमें फंस जाते हैं फिर। यानी इसका मतलब है कि तुम्हें फिक्र करनी चाहिए कि तुम्हारे इर्द गिर्द अगर गुनाह हो रहे हैं, बुराइयां हो रही हैं, जुल्म सितम हो रहे हैं, गलत कारियां हो रही हैं, तो अपनी आंखों से देखते हो ना, तो फिर चुप करके ना बैठ जाया करो। फिर अगर तुम चुप करके बैठ गए और तुमने कुछ भी ना किया, यू डोंट केयर, मैं तो खुद ठीक हूं ना, तो फिर डरो उस अजाब से। अजाब ये आसमानी आफात भी हो सकती है, जैसे तूफान है, जलजले हैं, और आज के दौर के अंदर अगर आप देखें तो ये कोविड है, इसने किसी को भी नहीं छोड़ा। नेक है, बद है, ये भी एक शक्ल है फितने की, तो ये सब पे ही आता है फिर। तो जब ऐसे फितने आते हैं तो नेक और बद सब रगड़े जाते हैं। और ऐसे चुन चुन के नहीं आता कि वो बुरा कर रहा था ना, उसको ऊपर होना चाहिए मैंने क्या किया है। नहीं, तुमने ये किया कि तुमने देखा और तुमने कुछ नहीं कहा उसको, तुम्हें ना गैरत आई। ये अल्लाह ताला के दीन को इस तरह मजाक बनाया जा रहा है, अल्लाह के अहकामात को तोड़ा जा रहा है, और मैं अपनी अल्लाह अल्लाह कर रही हूं। तो जो बेगुनाह है, जो जो किसी गुनाहों में नहीं है, वो अगर अपना फर्ज अदा नहीं करते तो ये भी एक गुनाह है। वो कहता है मैं तो कोई बेहयाई नहीं ना करती, लेकिन बेहयाई से रोकते भी नहीं। मैं तो सूद नहीं ना खाता, लेकिन सूद खाने वालों को भी नहीं कुछ कहते, तो फिर बचोगे तुम भी नहीं। देखा नहीं वो सप्त वालों का किस्सा, मछली वालों का, जिन्होंने सप्त के दिन मछलियां पकड़ी उनको तो सजा मिली। और जो कह रहे थे, एक एक वो भी तो थे ना जो कह रहे थे कि ना करो, ये अमर बिल मारूफ व नहीं अनिल मुनकर कर रहे थे, और तीसरा ग्रुप कौन सा था, कहते तुम क्यों कर रहे, क्यों रोकते हैं इनको, क्या जरूरत पड़ी तुम्हें रोकने, करने दो, अल्लाह ताला खुद ही इनको पूछ लेगा। तो अब फिर क्या हुआ एंड में, उनको भी सजा मिली जिन्होंने काम ये सप्त का दिन मछलियां पकड़ी थी, और उनको भी मिली जो खामोश रहते थे। तो इस आयत में असल में इस चीज का बताया जा रहा है कि देखो, बदी बुराई उसको अपने अंदर पनपने ना दो, फ्लरिश ना करने दो, जड़ ना पकड़ने दो, ऐसा माहौल पैदा ना होने दो कि जहां पे लोग बुराइयां करना चाहते हैं तो उनको कोई पूछने वाला ही नहीं, उनको कोई डर खौफ ही नहीं है, चाहे अपना घर है, चाहे अपना शहर है, चाहे अपना मुल्क है, हर जगह पे जितनी जितनी जिसकी कैपेसिटी है, जितना जिसके अंदर जोर है, वो अपना जोर लगा ले। जहां पे आपका जोर खत्म हो जाए ना, वहां पे पूछ नहीं है, बस जहां तक जोर है वहां पे लगाने का हुक्म। ऐसा नहीं है कि आप बस देखते जाएं और कहते जाएं को तो हम क्या कर सकते हैं, नहीं, हमें तो कौन पूछता है। देखिए, आपको पहले भी बताया था ना कि जब बुराई को देखें तो क्या करें, हाथ से उसको रोकने की कोशिश करें। अब हाथ की ताकत जो है ना, ज्यादातर वो हुकूमतों के पास होती है, तो उनका काम होता है कि वो बुराई को मना करें, रोके। पुलिस आए या फौज ला खड़ी कर दी, ये कर दिए, ये नहीं है, वो अपने ताकत से उसको रोकते हैं। ठीक है, ये आम लोगों के हाथ में अक्सर नहीं होता। अपने घरों के अंदर हो सकता है कि इंसान हाथ पकड़ ले किसी का और उसको रोक दे। अगर ये नहीं कर सकते तो जुबान से बुरा कहें, बोले तो सही ना, जुबान तो कंट्रोल में है, वो तो नहीं किसी ने पकड़ी, कहें तो सही कि ये गलत हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए, ये बुराई है। अब बाज लोग ऐसे करते हैं, साथ गलत भी कहते जाते हैं, साथ खुद करते भी जाते हैं। करप्शन बहुत है, बहुत करप्शन है, हाय बहुत करप्शन, और खुद भी करप्ट है, खुद भी रिश्वतें देते हैं और लेते हैं, और साथ ढोल पीटा हुआ कि देखो कितनी करप्शन हो रही है। तो इस बारे में फिर वो अपनी जुबान से बुराई को मिटाने की कोशिश करें, बुराई से लोगों को रोकें, और इस यह भी नहीं कर सकते तो कम से कम दिल में तो उसको बुरा समझें। और हदीस में आता है ये कमजोर तरीन दर्जा है, कमजोर तरीन दर्जा है। अगर ये भी नहीं किया कि दिल में आपने बुरा समझा, बहुत सारी बुराइयां आज हमारे सामने होती हैं, हम उनको दिल में भी नहीं यकीन करें, दिल में भी नहीं बुरा समझते, कहते ये तो आजकल ट्रेंड है ना, ये तो आजकल फैशन है ना, ये तो आजकल सभी करते हैं ना, हमारे अंदर से बुराई की कराहत भी निकल गई, बुराइयों के साथ दोस्ती कर ली, कॉम्प्रोमाइज कर ली है। अब इसके बाद तो ईमान समझ ली है ही नहीं। मुस्लिम की हदीस में है कि जो बुराइयां जब वो फैल जाती हैं तो जो जिहाद करे उनके खिलाफ, यानी कुव्वत के साथ उनको रोकने की कोशिश करे तो वो मोमिन है, जो अपनी जुबान से रोकने की कोशिश करे तो वो मोमिन है, और जो दिल से उसको बुरा कहे तो वो मोमिन है, और इस जिसके दिल में भी बुराई की कराहत नहीं है फिर उसके अंदर कोई ईमान भी नहीं है। देखिए ना, चलो जुबान से बोलने पे भी हो सकता है कि कोई ऐसे इतनी जाबिर हुकूमत हो कि जुबान से बोलने पे भी वो जुबाने खींच लेती हो, और आपके सामने ही मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं है, ऐसे मुल्क हैं कि जहां पे हक की बात करने वाले उलमा को उठा के ऐसे कैद में डाल दिया जाता है कि वो उसके बाद मिलते भी नहीं। तो जुबान से भी नहीं वो कह सकते कि ये गलत है, इतनी उनके ऊपर वहां पे सख्ती है। तो ऐसी जगह भी होती है इंसान तो जुबान से नहीं बोल सकता, पर दिल तक तो आपके कोई नहीं ना पहुंच रहा, कम से कम दिल में तो बुरा जाने, वो भी हमने छोड़ दिया है। वो भी आज हम तरह तरह के उनको लेबल्स दे के ना, खूबसूरत नाम दे के, और उनको कहते हैं ये तो ये चीज है, हम उनको बुराई नहीं कहते, ये चीज बुरी है ये नहीं कभी कहते। इसलिए बहुत जरूरी है कि ये काम किया जाए कि अमर बिल मारूफ नहीं मुनकर, वरना सारे डूब जाओगे, कोई भी नहीं बचेगा। अल्लाह ताला ने मोमिनों को हुक्म दे दिया यहाँ पे कि आपस में कोई ऐसा काम देखें जो गुनाह का है तो उसको जारी ना रहने दे, वरना आम अजाब में सब आ जाएंगे। देखिए महंगाई का अजाब, कि ये भी अजाब है, महंगाई एक अजाब है, बीमारियां अजाब है, और हम आज असल में ना अच्छे बनना चाहते हैं ना, तो हम कहते हैं मैं क्यों कहूँ, मैं क्यों बुरी बनूँ, मेरी तारीफें ही होती रहेंगी कि कितनी अच्छी है, अगर मैं कहूँगी तो मैं बुरी बन जाऊंगी ना, अल्लाह के हाँ बुरी बनते रहे वो कोई बात नहीं है, लेकिन लोगों के सामने तो ना मैं बुरी बन। ठीक है, आपको ये नहीं कहा जा रहा कि आप दूसरों के साथ बदतमीजी शुरू कर दें, दूसरों के साथ रूड होना शुरू कर दें, और जिसके साथ आप बाद मिसाल के तौर पर माँ बाप ही कोई गलत काम कर रहे हैं, अब चूंकि हमने आज अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर का पढ़ लिया तो अब माँ बाप को फोन उठा के तो उनको सुना रहे हैं, उनपे चढ़ाइयां कर रहे हैं, हस्बैंड कोई बात कर रहे हैं तो उनके ऊपर कोई ऐसा गुस्सा कर रहे हैं कि आप मास्टर हैं। इस तरह से नहीं होता, हमें ये भी समझना है कि अमर बिल मारूफ अनिल मुनकर है करना कैसे है। ठीक है, अगर ये मान भी लेते हैं कि हमने करना है ये काम, क्योंकि अगर ये नहीं किया तो सारे ही मरोगे, कोई भी नहीं, किसी ने बचना नहीं है। वो वाली कश्ती वाली मिसाल नहीं आपको पता, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कश्ती वाली मिसाल दी थी कि कश्ती में कुछ लोग ऊपर हैं कुछ नीचे हैं, जो नीचे वाले लोग हैं ना उनको ऊपर जाना पड़ता है पानी लेने के लिए, तो उन्होंने कहा इनको क्या तकलीफ देनी, हमने ऊपर जाते हैं पानी लेते हैं इनको भी तकलीफ होती, हम क्यों ना ऐसा करें नीचे ही हम कश्ती के अंदर सुराख कर लेते हैं, उन्होंने नीचे कश्ती में सुराख करना शुरू कर दिया। अब वो ऊपर वाले आके अगर इनका हाथ नहीं रोकते तो कौन डूबेगा, क्या नीचे वाले डूबेंगे या सारे डूबेंगे बताएं, वो आके इनका हाथ रोके वरना सब डूब जाएंगे, और अगर वो कहें हमें क्या हम तो ऊपर रहते हैं हमें क्या नीचे वाले जो मर्जी करते हैं, तो क्या होगा फिर। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस जान की, उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, या तो तुम अमर बिल मारूफ नहीं ना मुनकर करते रहोगे या अल्लाह ताला तुम्हारे पास से कोई आम अजाब नाजिल फरमा देगा, फिर तुम उसे दुआएं भी मांगोगे वो कबूल नहीं होने, यानी फिर दुआएं भी करेंगे तो कबूल नहीं होगी। ये भी फरमाया या तो तुम नेक बातों का हुक्म दो और बुरी बातों से रोको और नेकियों की रग़बत दिलाओ, वरना अल्लाह ताला तुम सबको तहस नहस कर देगा, या तुम पे बुरे लोगों को मुसल्लत कर देगा, फिर नेक लोग दुआएं करेंगे वो दुआएं नहीं कबूल होंगी, तो फिर क्या चाहते हैं हम, खामोश रहना, आ जाए हमारे ऊपर अजाब, आया हुआ है ना अजाब। तो इस पे हजरत उम्मे सलीमा ने पूछा था या रसूलल्लाह उनमें ये जो लोग हैं जब लोग बुराइयां आम हो जाएंगी यानी बुराई फैलने लगेगी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना जब मेरी उम्मत में गुनाह जाहिर होंगे तो अल्लाह ताला आम अजाब भेज देगा, यानी गुनाह बहुत होने लगे, तो हजरत उम्मे सलीमा ने पूछा कि या रसूलल्लाह उनमें तो नेक लोग भी होंगे ना, तो आपने फरमाया हाँ होंगे, फिर पूछा उनका क्या होगा, फरमाया उन्हें भी वो ही पहुंचेगा जो औरों को पहुंचेगा, फिर उन्हें अल्लाह की मगफिरत और रजामंदी मिलेगी। यानी उसमें ही अगर वो उनको मौत आ गई उसी अजाब के अंदर, तो फिर कयामत के दिन वो अपनी नेकी पे उठेंगे, मगर पहुंचेगा उनको भी वो अजाब। ठीक है। और एक और हदीस में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो लोग बुरे काम करने लगे और उनमें कोई जी इज्जत यानी इज्जत वाला, असर और रसूख वाला, जिसके पास पावर है, जिसका इतना होल्ड है, अथॉरिटी है, और वो मना ना करे, रोके नहीं, तो उन सबको अल्लाह का अजाब होगा, सजा में सब शामिल रहेंगे। अब एक बाप है ना, उसकी जिम्मेदारी है उसके बच्चे अगर गलत काम कर रहे हैं तो वो उनको रोके, अगर बेटियां गलती कर रही हैं, बेटे गलती कर रहे हैं, उनको कहे कुछ, वो माने नहीं माने वो बात अलग है, कि हम कहेंगे आप बच्चे तो सुनते ही नहीं, नहीं, ये कहने की वजह से आप छोड़ नहीं सकते, वो उनको मना करे। ऐसा नहीं है कि वो बाप भी हैं और बेटियां और बेटे भी हैं और सारे गलत काम देख रहे हैं माँ बाप और उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये नहीं होना चाहिए। अल्लाह अकबर। इसलिए अगर आपके पास कुछ भी थोड़ी बहुत अथॉरिटी है, पावर है, उसको यूज कीजिए, और गलत काम अपने सामने होते देख के आराम से ना बैठे रहें। भाई बहुत दफा देखा है, बहुत सारे बुजुर्ग लोग होते हैं उनके सामने अस्तग़फिरुल्लाह ऐसे ऐसे सीन चल रहे होते हैं, या नाच गाना ऐसा चल रहा होता है, या ऐसी बेहयाइयां हो रही होती हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो आराम से बैठे हैं। या बेटियां ऐसे गलत लिबास पहन के बाहर से निकल रही होती, तो कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, क्या हम तो सुनते ही नहीं, बस सुनते नहीं है वो बहाना करके हम कहना ना छोड़ दें, हमने कहना है, क्योंकि जुबान तो इस्तेमाल करो ना, ताकि आपकी तरफ से हुज्जत तमाम हो जाए। देखिए सबको सजा तभी मिलती है ना जब अक्सरियत लोग उसके अंदर शामिल हो जाते हैं और लोग रोकते नहीं है, हम क्यों कहें, मैं क्यों कहूं, क्योंकि हमें अच्छा बनने का और अच्छा बने रहने का बहुत शौक है। वैसे हम देखें इस मामले में ही ऐसा करते हैं, जहां पे अल्लाह के हुक्म टूट रहे हों तो वहां पे हमें अच्छा बनने का शौक होता है, अगर वैसे हमें कोई कुछ कह दे, हमारी बात कोई ना माने, फिर नहीं हमें कोई अच्छा बनने का शौक होता। अब घर में शौहर है वो किसी बात से मना करे, फिर नहीं हमें ये परवाह होती कि मैंने तो अच्छी बन के रहना है तो मैं आप जुबान ना चलाऊं, है ना, फिर नहीं हम ये सोचते। लेकिन अल्लाह ताला के हुक्मों के आगे बात हो जाती है कि वो टूटे तो टूटे, मुझे क्या, मैं क्यों बुरी बनूं, यानी उठ के हम ये भी नहीं कह पाते कि ये बंद कर दो, ये मत करो, ये गलत है, या उठ के ही चले जाएं, ये भी नहीं करते, क्योंकि अच्छा बनना है हमें, क्योंकि हमें ये है कि लोग कहेंगे कि ये बैकवर्ड है, ये कैसी है। अल्लाहु अकबर। वालमु अन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब। और देखें हम ये सारे काम किस लिए करते रहते हैं, गलत करते भी हैं और गलतियां देख के भी उसके बाद भी बिल्कुल माइंड नहीं करते, इसलिए कि हम कह देते हैं बस अल्लाह गफूर रहीम है ना, तो ये भी बता दिया गया, ये भी समझ लेना, जान लो इस बात का, इल्म ले लो, अगर नहीं अभी तक पता तो अब ये पता कर लो, अब ये पता चल जाना चाहिए कि अल्लाह ताला फिर सजा देने में भी बहुत सख्त है, समझ आई। तो ये बुराइयां कर करके फिर उसके बाद अल्लाह गफूर रहीम है ये कहते जाना, ये सॉल्व नहीं करेगा प्रॉब्लम, गुनाह हो रहे हैं, बुराइयां हो रही हैं, तो ये भी सोचो कि अल्लाह सख्त सजा देने वाला भी है। अगर किसी को कह देना कि ये जो दुनिया के अंदर हो रहा है ये हमारे अपने गुनाहों की वजह से, वो इस बात को भी माइंड करते हैं कि क्यों आपने ऐसा कह दिया, अरे अल्लाह तो इतना गफूर रहीम है, आप ये ऐसी बात क्यों कर रहे हैं। हम ये नहीं सोचते कि हम क्या आज कर रहे हैं, किस नहज पे हम पहुंच गए हैं, कितनी हद तक यहाँ पे दुनिया के अंदर बुराइयां हो रही हैं, इज्तमाही तौर पे हम एक लपेट में आ गए हैं, तो उस तरफ जाना ही नहीं, क्योंकि हम कंटिन्यू करना चाहते हैं जो हम कर रहे हैं, और बस यही कह के कि अल्लाह ताला तो बड़ा गफूर रहीम। वद्गुरु, और यहां से आप देखेंगे बहुत सारी एहसानात अल्लाह ताला ने अपने याद कराई है कि याद करो, उज़कुरु या इद, इद भी जब आ जाता है, इंग्लिश वाला इज नहीं, ये अरबिक वाला, तो वो याद करने के लिए है कि यानी याद करो, यानी वो जमाना याद, जैसे हम कहते हैं ना, याद है तुम्हें ऐसे होता था, तो याद करो। अब खासुल खास सहाबा कराम को कहा जा रहा है, लेकिन हम सबके लिए एक रिमाइंडर है, वज़कुरु इद अंतुम कलील मुस्तदाफून फिल अर्द, जब तुम बहुत थोड़े से थे, कमजोर समझे जाते थे जमीन में, यानी किस वक्त की बात हो रही है, मक्का में जब तुम रहते थे ना, तो याद करो कि तुम उस वक्त कितने कमजोर थे, कितने यानी उनकी कोई भी पावर नहीं थी, आपको पता है, मक्का में रहते हुए हर वक्त टॉर्चर, हर वक्त जो बेचारे गुलाम थे उनका तो हाल ही बुरा कर छोड़ा था, उनको कितना टॉर्चर दिया जाता था। अच्छा, जो गुलाम नहीं भी थे उनके भी घर वालों ने उनका जीना हराम कर दिया था, अपना सका बाप होता था, चचा होता था, घर वाले होते थे, वो के किस किस तरह टॉर्चर करते थे। तुम कमजोर समझे जाते थे जमीन में, कोई वैल्यू नहीं इनकी समझी जाती थी, कि कुछ नहीं है ये तो, तखाफून अन यतखत्तफकुम नास, तुम डरते थे कि उचक लेंगे लोग तुमको, यानी लोग तुम्हें अब मिटा ही देंगे, इतना जाहिर ही बात है, इनका क्या जोर था, वहां पे तो ऐसे थे कि इनकी कोई से नहीं थी, जाके काबा तक में नमाज नहीं पढ़ पाते थे, कुरान नहीं ऊंची आवाज में पढ़ पाते थे, वो पता है कि वो वाकयात भी आपको पता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पे ओजड़ी रख दी थी काफिरों ने, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला ने कितना मारा था, हजरत बिलाल का क्या हाल किया, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ने जब आज जाके काबा में पढ़ा था कुरान, तो क्या उनका हाल किया था, तो ऐसे लग रहा था कि ये अब जिंदा नहीं रह सकेगी। फिर इसी तरह जो इस्लाम का दावा करता था उसके साथ क्या करते थे, और कई लोग इस खौफ की वजह से बताते ही नहीं थे कि हम इस्लाम ले आए, तो याद करो कि तुम्हारे ऊपर क्या हालात थे, फआवाकुम, फिर उसने पनाह दी तुमको, यानी मदीना में तुम्हारे लिए एक जगह जो अमन वाली है, कम से कम वहां पे ये मसला नहीं है कि कोई मुंह से बोल नहीं सकता कि मैं इस्लाम ले आया, मदीना में आके तो ये खत्म हो गया था ना, ये चीज, ये खौफ नहीं था, उसको बहुत मतलब वेलकम किया जाता था जो इस्लाम ले आता, तो अल्लाह ने तुम्हें एक पनाह की जगह दे दी, वह अय्यदकुम बिनसरी, और अल्लाह ने अपनी मदद दी तुम्हें, अपनी मदद के साथ तुम्हारी ताईद की, अल्लाह की मदद आ गई थी, और वह रज़क़कुम मिन अत्तय्यिबात, और रिज़्क दिया तुमको पाकीज़ा चीजों में से, मदीना में आके रिज़्क का भी मसला थोड़ा वो हुआ, क्योंकि यहाँ पे तो बागात थे खजूरों के, अल्लाह ने रिस्क भी मुहैया किया, अल्लाह ताला ने अपनी ताईद भी की, यानी अब कोई खौफ व खतर वैसा नहीं था कि जैसे यहाँ पे बोला तो कलमा पढ़ लिया तो क्या हो जाएगा, और फिर देखें मदद ऐसे भी आई कि जो अंसारे मदीना थे उन्होंने कैसे दिल खोल दिए, ये अल्लाह की तरफ से ही मदद थी ना, अपने घर हाजिर कर दिए, अपने बाग हाजिर कर दिए, लअल्लकुम तशकुरून, ये किस लिए, ये किस लिए है, ताकि तुम अब ऐश आराम करो और अल्लाह की परवाह ही ना करो, क्योंकि अक्सर यही होता है ना, जब ये चीजें मिल जाती हैं कि हमें एक सेफ प्लेस भी मिल गई, पीसफुल जगह भी है, हमारे सारे काम भी ठीक हो गए, हमें रिस्क भी में कुशादगी हो गई, पाकीजा चीजें भी मिल रही, आप जस्ट सोचें कि उसके बाद हमारा क्या होता है, एवरीथिंग इज वेल नाउ, हर चीज ठीक ठाक हो गई है, उसके बाद क्या होता है, अब फिर अल्लाह ताला को क्या याद करना, अब ना वो दुआओं में खुशू रह गया, ना नमाजों के अंदर वो गिरिया उजारी रह गई, ना सजदे वैसे हुए, ना तहज्जदे वैसे उठ के पड़ी गई, अब सारी चीजें मिल गई, अब क्या, हम तो जब मुसीबतें आती हैं तब होते हैं ना बड़े अल्लाह के सामने आजीज मिस्कीन बन के, बड़े फर्माबरदार बन के बैठते हैं, बड़ा अल्लाह को याद करते हैं, जब सब चीजें ठीक हो जाती हैं तब क्या करते हैं, यहाँ पे अल्लाह ताला ने बताया सब चीजें ठीक हो गई, हालात बेहतर हो गए, ये किस लिए, लअल्लकुम तशकुरून, यानी अल्लाह ताला जब नेमतें दे ना तो उसके बाद होना क्या चाहिए? तुम और ज्यादा झुक जाओ, तुम और ज्यादा अल्लाह ताला की शुक्रगुजारी में लग जाओ, अल्लाह की नेमतों को पाने के बाद और बिगड़ के ना बैठ जाओ, आपे से ना बाहर हो जाओ। हमें देखे रिस्की फरमानी मिल जाए, फिर हमारे हाल क्या होते हैं? वो इसराफ हो रहा है, वो तबजीर हो रही है, वो पैसा उड़ाया जा रहा है, वो शो ऑफ हो रही है, वो ऐसे दिखावे, ऐसी चीजें, ऐसे काम जो पहले कभी नहीं किए थे वो सब करने लगते हैं। ये शुक्रगुजारी है, मुनअम की, नेमत देने वाले की ये कदरदानी है, ये कदर की आपने। तो नेमत पा लेने के बाद ज्यादा झुकना है, नेमत पा लेने के बाद शुक्रगुजारी में इजाफा होना चाहिए। वैसे तो जो फकीर भी है उसको भी अल्लाह ने नेमतें दी हैं, कोई बंदा ऐसा नहीं है जो नेमतों के बगैर है, याद रखिए। कोई ये ना सोचे हमने हमें तो ये नहीं मिला, वो नहीं, हर एक के पास नेमतें, वो कितने ही बुरे हालात में, याद रखें एक बात, उसके ऊपर जो नेमतें हैं वो ज्यादा हैं उससे, उन चीजों के मुकाबले में जो उसके पास नहीं है। हमेशा ऐसा है, अगर आप गिन के देख लेना तो आपको पता चलेगा, बहुत सारी नेमतें हमें तो नजर ही नहीं आती हैं। असल में हम यूज्ड टू हो जाते हैं नेमतों के, और फिर वो हमें नेमत लगती ही नहीं। जब आप मसलन आप बड़े घर में रहते हैं ना, आप कुछ दिन में जब आपको वो बड़ा घर मिला तब तो आपको बड़ा बहुत बड़ा लगा, कुछ दिन के बाद वो आपको आम सा ही लगने शुरू हो गया, आप यूज्ड टू हो गए ना, अब वो इतना बड़ा भी नहीं लगता, सबके पास ही है। आप सांस लेते हैं ना रोजाना, तो क्या हो गया, सांस लेते हैं तो सारे ही सांस लेते हैं, जानवर भी सांस लेते हैं, ये कौन सी कोई ऐसी बात है? लेकिन इसलिए ये इतनी बड़ी बात नहीं लग रही क्योंकि आप इसके यूज टू हो चुके हैं। किसी दिन अगर सांस ना आए ना, फिर पता चलेगा ये कितनी बड़ी नेमत है। आंखों की नेमत आपको तो क्या हो गया, आंखें तो सबकी ही है। हाँ, इसलिए कि जब से आप पैदा हुए आप देख रहे हैं, इस वजह से ये आपको कोई नेमत ही नहीं लगती। कोई भी चीज आपको कितनी लग्जूरियस चीज, बड़ी गाड़ी मिल जाए, बड़ा ओहदा मिल जाए, कुछ दिन के बाद वो तो क्या लगने लगता है, ये तो आम सी चीज है, ये तो सबके पास ही होती है, ये कौन सी इतनी बड़ी बात है। फिर हमारे ये एटीट्यूड्स हो जाते हैं। शुक्रगुजारी पता है क्या है, ऐसे ही जैसे एक बच्चा कहता है ना, कोई चीज देखता तो हाँ, छोटी सी पेंसिल ही आप उसको दे देते, उसके मुंह से कैसी आवाज निकलती है, वो शुक्रगुजारी है, वो कदर है उस नेमत की। हम कदर भूल जाते हैं, हमें लगता है बस है तो है ही। आप देखें, बहुत सारे आप में से सुनने वाले अपने मुल्क को छोड़ के आए हैं, उन मुल्कों को हम छोड़ के आए हैं जहां पे बड़ी बदअमनी, बहुत बेचैनी, महंगाई, करप्शन, बहुत ज्यादा लॉ एंड ऑर्डर में फ्लॉस, रिश्वतें, टारगेट किलिंग, किडनैपिंग, रेप्स, ये सब चीज़ें इतनी ज़्यादा थी, और अल्लाह ने आपको एक अमन की जगह दे दी, अल्लाह ने आपको रिस्क भी तैयब अता फरमाया, अल्लाह ने अपनी मदद आपके शामिल हाल कर दी कि आप गैर मुल्क में भी आके आराम से अपने रहते हैं, अपने दीन को फॉलो कर रहे हैं, अपना चल रहे। अब इसके बाद क्या होना चाहिए था, अमनो अमान आपको मिल गया, वहाँ पे इतनी बेचैनी थी, वहाँ पे लोग कितने कितने मसाइल में, ना मेडिकल सही मिल रही है फैसिलिटी, ना कोई और सही से सफाई सुथराई है, गलियाँ मोहल्लों के क्या हाल थे, आप साफ सुथरी जगह पे आके रहने लगे, अल्लाह ने आपको एक पनाह की जगह दे दी, उसके बाद होना क्या चाहिए था, अल्लाह के शुक्र गुजार होते। हमने वो जो दीन जितना थोड़ा बहुत फॉलो कर रहे थे वो भी छोड़ दिया, क्योंकि अब सब कुछ जो मिल गया अब जरूरत नहीं है, अब इन मुल्कों में हम इनके जैसे होके रहेंगे। उस रब ने, उस मालिक ने जिसने पनाह की जगह दे दी, वहां पे इतनी महंगाई थी, कितनी जिन लोग जो तनख्वाहदार लोग होते हैं उनके कितने मसाइल हैं, और अल्लाह ताला ने कुशादगी दे दी, दूसरी दफा सोचते नहीं है कोई चीज खरीदने से पहले, आराम से रह रहे हैं। इसके बाद शुक्रगुजारी में इजाफा होना चाहिए, ये अल्लाह ताला आपसे एक्सपेक्टेशन रखता है, ये तो शुक्रगुजार बन जाते ना, लेकिन उल्टा हो गया, ना शुक्रे ज्यादा हो गए। हाँ देख लेना फिर वो उसके बाद, ये चीज ठंडी क्यों है और ये गर्म क्यों नहीं है और ये ऐसे क्यों है और वो फलानी चीज वैसे क्यों है और वो डस्ट क्यों हो गई और वो मेरे पास ये वाला कपड़ा नहीं है और ये ब्रांड नेम नहीं है, ये फिर बातें होने लगी, बजाय इसके कि जो तुम्हारे पास था उसकी शुक्रगुजारी करते। अल्लाह ताला नेमतें याद दिलाता है कि अपने पिछले हाल को भी याद किया करो, हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं उन दिनों को जब पैसे गिन गिन के रखते थे और अल्लाह ने परवानी दिया, जब बदमनी में रहते थे और अल्लाह ने अमनो अमान दिया, तो उन दिनों को याद करते रहना चाहिए कि मैं ऐसी थी, ये मेरा हाल था, बीमारी के दिन थे या जिस तरह के भी हालात थे, उन हालात से जब अल्लाह ताला अच्छे हालात दे दे ना तो शुक्रगुजार बन जाया करें, ना शुक्रे ना हो जाया करें। सबके पास वो चीजें नहीं है जो आपके पास है, सबको मैं कह रही हूं, ये नहीं कि जो कोई वेस्ट में रह रहे हैं सिर्फ उनकी नहीं बात हो रही, सब आप सबके पास वो कुछ है जो बहुत सारे लोगों के पास नहीं है, इसलिए शुक्रगुजार बनिए। या अय्युहल्लदीना, असल में हम वो वाला वक्त जल्दी भूल जाते हैं ना, तो आज याद करिएगा फिर वो वाला वक्त भी, पिछला भी वक्त, और याद करते रहिएगा और अपने बच्चों को भी बताइएगा, ठीक है।